ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। जनजी आंदोलन से हुए नुकसान के पुनर्निर्माण के लिए सरकार की विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक। अगले आर्थिक वर्ष तीनों तहों की सरकारों से बजट आवंटन का आह्वान। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम। उपसभापति अर्याल और डॉ वागले का सांसदों से जनता की आशा और विश्वास बनाए रखने का आग्रह। मुगलिंग पोखरा सड़क विस्तार परियोजना के तहत आबू खैरेनी से जामुने तक 41 किलोमीटर खंड का निर्माण हुआ पूरा। और अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को कम करने की विश्व स्वास्थ्य संगठन की अपील। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने गत भाद्र 23 और 24 को देश के विभिन्न स्थानों पर हुए आंदोलन से हुई आर्थिक और भौतिक क्षति के पुनर्निर्माण और पुनर्व्यवस्थापन के लिए विस्तृत परियोजना कार्यक्रम कार्ययोजना सार्वजनिक की है। राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ प्रकाश कुमार श्रेष्ठ के नेतृत्व में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई इस कार्ययोजना में क्षति की मात्रा, पुनर्निर्माण की रणनीति, संसाधन प्रबंधन और निजी क्षेत्र के पुनरुत्थान तक के विषय शामिल किए गए हैं। साथ ही चालू आर्थिक वर्ष और आगामी दो आर्थिक वर्षों में तीनों तहों की सरकारों द्वारा पुनर्निर्माण के लिए बजट आवंटित करने की व्यवस्था के साथ कार्ययोजना तैयार की गई है। कार्ययोजना में तत्कालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन रणनीतियों के आधार पर काम आगे बढ़ाने का उल्लेख किया गया है। इसी तरह कार्ययोजना में पुनर्निर्माण के मुख्य आधार के रूप में आंतरिक संसाधनों के परिचालन को प्राथमिकता दी गई है। तीनों तहों की सरकारें अपने स्रोतों से पुनर्निर्माण का काम आगे बढ़ाएगी और आवश्यकता पड़ने पर संघीय सरकार सहयोग करेगी, ऐसी नीति तय की गई है। साथ ही निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ सहकार्य करते हुए समन्वित ढंग से पुनर्निर्माण आगे बढ़ाने की रणनीति अपनाई गई है। राष्ट्रीय योजना आयोग के सह प्रवक्ता डॉ दिवाकर लुईटेल के अनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाओं के पुनर्निर्माण के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजनाएं तैयार कर उसी के अनुसार बजट आवंटित करना होगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आंदोलन के कारण कुल 84,45,77,00,000 रूपये के बराबर की क्षति हुई है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने अपने नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यों के लिए आज से अभिमुखीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। ललितपुर के ग्वारको में शुरू हुए अभिमुखीकरण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए रासोपा के उपसभापति डोल प्रसाद अर्याल ने जनता की आशा और विश्वास को कायम रखते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाने का आग्रह किया। उपसभापति अर्याल ने कहा कि नागरिकों को महसूस होने वाला काम करने वाली सरकार बनाकर भ्रष्टाचार का अंत और सुशासन स्थापित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से देश की बागडोर संभाल रहे राजनीतिक दलों की गलत गतिविधियों के कारण आज की स्थिति पैदा हुई है और इससे हमारी पार्टी तथा जन निर्वाचित प्रतिनिधियों को जिम्मेदार और जवाबदेह बनाया है। पार्टी के एक अन्य उपसभापति स्वर्णिम वागले ने 48% मतों के साथ मिले लगभग 2/3 बहुमत के विश्वास को बनाए रखते हुए जनता के भरोसे को कायम रखने पर जोर दिया। उपसभापति वागले ने कहा कि विक्रम संवत 2015 के बाद मिले इस बड़े जनादेश का सम्मान करते हुए विधायक की भूमिका निभानी होगी। उन्होंने सांसदों से जनता की शिकायतों और मुद्दों को उठाने तथा अपनी ही सरकार द्वारा किए गए गलत कार्यों का भी विरोध करने का आग्रह किया। दो दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम में सांसदों को संसदीय अभ्यास, नीति निर्माण, संसद की कार्यप्रणाली, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी तथा पार्टी की भावी नीतियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये जानकारी पार्टी के प्रवक्ता मनीष झा ने दी। गत फागुन 21 को संपन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव में रासोपा ने प्रत्यक्ष और समानुपातिक दोनों प्रणाली में कुल 182 सीटें हासिल की है। गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल को यातायात क्षेत्र से संबंधित सर्वोच्च अदालत के आदेश और फैसलों के क्रियान्वयन के लिए गठित जांच बूझ आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग के अध्यक्ष दीपक सुवेदी सहित पदाधिकारियों की टीम ने आज मंत्री अर्याल को ये रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर गृहमंत्री अर्याल ने रिपोर्ट को जल्द ही कार्यान्वयन में लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष 22 की मंत्रिपरिषद बैठक के निर्णय के अनुसार यातायात क्षेत्र से संबंधित राय और सुझाव सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 3 सदस्यीय जांच बूझ आयोग गठन करने का निर्णय किया गया था। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415 हेस डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। गृह मंत्रालय ने नेपाल चीन संबंधों को प्रभावित करने वाली घटनाओं की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस को निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि परराष्ट्र मंत्रालय के पत्र के अनुसार घटना का विस्तृत विवरण संकलन पत्र से प्राप्त हुआ है। पत्र में उल्लिखित घटना के संबंध में जांच कर दोषियों को कार्रवाई के लिए भेजने का निर्देश दिया गया है। मोरंग के मनमोहन टेक्निकल इंस्टीट्यूट में चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग द गवर्नमेंट ऑफ चाइना नाम की किताब जलाने के विषय पर चीन ने परराष्ट्र मंत्रालय द्वारा ध्यानाकर्षण कराया था। पृथ्वी राजमार्ग के मुगलिंग पोखरा सड़क विस्तार परियोजना के अंतर्गत तनहू के आबू खैरनी से जामुने तक 41 किलोमीटर खंड का निर्माण पूरा होने के बाद इसे सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया है। एशियाई विकास बैंक से 6 अरब 31 करोड़ रुपए का ऋण लेकर बाजार क्षेत्र में 6 लेन और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 लेन में सड़क का विस्तार किया गया है। सड़क विस्तार परियोजना के सूचना अधिकारी विष्णु प्रसाद पांडे ने जानकारी दी कि आगामी 5 वर्षों तक सड़क का रखरखाव निर्माण कंपनी द्वारा किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखी गई कमी को कारण बताकर खाना पकाने वाले एलपी गैस की अवैध कारोबार किए जाने की सूचना मिलने पर यदि आपके पास कोई जानकारी हो तो तुरंत 1137 नंबर पर निशुल्क फोन करके जानकारी देने का वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी से अनुरोध किया है। पिछले कुछ दिनों में खाना पकाने वाली गैस में कालाबाजारी बढ़ने, अत्यधिक मात्रा में छिपाकर रखने और अधिक मूल्य लेकर बिक्री वितरण किए जाने की घटनाएं सामने आने के बाद विभाग ने आम उपभोक्ताओं से उक्त निशुल्क टेलीफोन नंबर पर फोन कर सूचना देने का आग्रह किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को कम करने की अपील की है। WHO ने कहा है कि इससे लोगों के स्वास्थ्य और जीवन पर खतरा बढ़ रहा है। WHO की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ी हुई झड़पों के कारण फरवरी के अंत तक से अब तक अफगानिस्तान में कम 6 स्वास्थ्य केंद्र प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा काबुल में गृह मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे उम्मीद नशा मुक्ति केंद्र पर रात में हुए हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 250 लोग घायल हुए हैं। ये लोग नशे की समस्या के इलाज के लिए भर्ती थे। WHO ने आगे कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन इन घटनाओं की जांच कर रहा है लेकिन बढ़ता संघर्ष स्वास्थ्य व्यवस्था पर और दबाव डाल रहा है। कमजोर लोगों के स्वास्थ्य और जीवन पर खतरा बढ़ रहा है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान के तालिबान शासन का आरोप है कि पाकिस्तान ने राजधानी काबुल में एक नशा मुक्ति अस्पताल पर हमले किए। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि उसकी सेना ने काबुल और नगर हार में अफगान तालिबान शासन के आतंकवाद को समर्थन देने वाले सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जेएनजी आंदोलन से हुए नुकसान के पुनर्निर्माण के लिए सरकार की विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक, अगले आर्थिक वर्ष तीनों तहों की सरकारों से बजट आवंटन का आह्वान। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम, उपसभापति अर्याल और डॉ वागले का सांसदों से जनता की आशा और विश्वास बनाए रखने का आग्रह। मुगलिंग पोखरा सड़क विस्तार परियोजना के तहत आबू खैरनी से जामुनी तक 41 किलोमीटर खंड का निर्माण हुआ पूरा और अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को कम करने की विश्व स्वास्थ्य संगठन की अपील। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।